قل ان سے کہہ دیجئے ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ, اس کو سنیے اور خود سے کہیے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے, کہیے ان سے ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کہ اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ کون یاد آتا ہے مشکل میں؟ لوگوں بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو, پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے, ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. اللہ سب کے دل کھول دے اس آیت پہ. بڑے سے بڑے بت کے سامنے بیٹھنے والا بھی بڑے دکھ میں اللہ کو پکارتا ہے, بڑی سے بڑی قبر کے سامنے ساتھ ماتھا ٹیکنے والا جب کسی حقیقی مشکل میں پڑتا ہے تو اللہ کو پکارتا ہے. تو پھر ضرورت ہے اس بات کی اللہ کی طرف دیکھیں, سب بھول جائیں ان کو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, بڑی زبردست آیتیں آ رہی ہیں آگے. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تھا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھکے. ٹاپک پتہ ہے آپ کو کئی آیتوں کا, ہم پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں. اور مجھے ابھی یاد آ گیا, ہم نے ماشاء اللہ یہ جب نور القرآن میں ابھی بھی کیا تھا ادھر لندن کورس میں, بہت ڈیٹیل سے سمجھا تھا تکلیف اور انعام, یعنی تکلیفوں کا کیا حساب ہوتا ہے, مشکلات کب آتی ہیں. تو پہلی وجہ تو بتا دی کہ تکلیفیں ہمیں توڑنے کے لیے آتی ہیں. عاجزی کرو لا اللہم یتدرعون, صرف خوشیاں ہی ہوں نا تو ہمارے سجدے ہی پتہ نہیں کیسے ہوں, جھکاتا ہے اللہ. خود کو جو بہت کچھ سمجھتے ہیں, بہت بڑی, مجھے بہت کچھ پتہ, میں یہ کر سکتی, میری تو بات ہی نہ پوچھو, مجھے تو اللہ نے کسی اسپیشل مٹی سے بنایا ہے. یہ ڈون اللہ کہتا ہے ٹوٹو. پھر کہو گی نہیں مجھے نہیں کوئی دیکھنے آئے, چہرے پہ اللہ ایسی چیز نکال دے گا کہے گا مجھے نہیں دکھانا کسی کو. اللہ جسم کا پوسچر ایسا کر دیتا ہے, انسان صرف اس سوچ سے نہیں کسی کو آنے دیتا کہ اس گیٹ اپ میں اب دوسروں کو دکھاؤں, میں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے دکھتی تھی, میں تو کبھی اپنے آپ کو سجائے بغیر چھوڑا نہیں تھا, اب لوگ کیا کہیں گے, اچھا یہ ایسی ہی بغیر میک اپ کے, اور میک اپ کیا تو لوگ کہیں گے اچھا یہ بیمار ہے جو میک اپ میں. بس تو اللہ سے حالات لے آتا ہے اللہ, لا اللہم یتدرعون, اصل پہ لے آتا ہے اللہ. پھر کیا ہوتا ہے اگلا درجہ دیکھیے, فلولا اذ جاءہم باسنا تدرعوا ولكن قست قلوبهم. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی, یعنی جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا, مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے. دل اور سخت کیسے ہوتے ہیں؟ چلو کوئی نہیں, جو تھوڑے تھوڑے میرے اوپر گناہ تھے نا وہ میری اس بیماری سے دور ہو گئے ماشاء اللہ, بس وہ مجھے پتہ ہے بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے, میرے گئے اب اور گناہ کر لوں. اور وہ میرے اوپر بچے کا غم پڑا ہے نا اور غم کے ساتھ تکلیفیں دور ہوتی ہیں, یہ دل کی سختی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اور بیچارہ کہنے لگتا ہے. اور اس کا اگلا مرحلہ دیکھیے, تھرڈ اسٹیپ کیا ہو گیا, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو, خوب وقت ضائع کرو, خوب فلمیں دیکھو, خوب اپنے آپ کو ادھر ادھر رکھو کیونکہ تم بیچارے دکھی جو ہو. پھر انسان ایک قسم کا جس کو کہتے اپنا ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے گناہ کرتا ہے. بعض لوگ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے غلط کام فلمیں لگا کے بیٹھ جائیں گے, چلو تم فلم دیکھو تاکہ تمہیں درد کا احساس نہ ہو. یہ شیطان کی حماقت ہے کہ وہ انسان کو تسلیاں, دیکھو نا تمہارا حق ہے, وہ اچھے لوگ ہیں وہ کریں, اب میں تو اتنی مجبوریوں میں پڑی ہوں, اب میں یہ نہیں کروں تو میں ٹائم کیسے پاس کروں. اور اس کے بعد کیا ہوا آخری مرحلہ اللہ کا, اللہ اکبر, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء, پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جنہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. یہ ہے اللہ کی پکڑ کا پہلا نقطہ. جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو شروع میں اللہ ہمیں خوب نعمتیں دیتا ہے, مال گھر دولت ہماری باندھی بن جاتی ہے, یہاں تک کہ جب ان بخششوں میں جو ان کو عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے, اتنے مصروف ہو گئے نعمتوں میں, بچوں میں نمازیں جانے لگی. مثال ہے کسی کی شادی ہوئی, بس واجبی واجبی معاملہ تھا, امیجن کیجیے, نئی نئی مرد کی جاب تھی, تھوڑے سے پیسے تھے, چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا, کیا کرتے اس میں بیٹھے, عبادت بھی ہوئی نماز بھی ہوا, ہوتے ہوتے کیا ہوا اللہ نے ترقی دی, اس گھر سے ذرا بڑا گھر آیا, خوب مگن ہو گئے اس کو سجانے میں سنوارنے میں, میچنگوں میں مشکلات میں بڑھتے رہے بڑھتے رہے, بچہ نہیں تھا, پھر اللہ نے ایک نہیں ایک کے اوپر دو تین بچے دیے, اتنے مگن ہو گئے کہ یاد ہی نہ رہا کہ نمازوں کے وقت کدھر تھے. फिर अल्लाह की पकड़ अगली आती है, हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अखज़ना हूँ बख्तातन। ये है अगला नुक्ता। फिर हमने उनको अचानक पकड़ा, कैसे पकड़ा, फ़ाइज़ा हूँ मुबलिसून, वो तो मायूस होकर रह गए। फिर मगन थे तो पकड़ भी अचानक लगी, अचानक चोट बहुत ज़्यादा लगती है आपको पता है। और हाल क्या है, अब हाल यह कि हर खैर से मायूस हैं। ऐसा होता कभी इंसानों के साथ? जितनी दुनिया कहते टाइम ही नहीं मिलता। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह को कहते हैं, अल्लाह क्यों दिए हमें इतने बच्चे, क्यों दिए इतना बड़ा घर, क्यों मेरे मर्द को करोड़पति कर दिया, अल्लाह क्यों मेरी इतनी गाड़ी है, क्यों मेरे घर में इतनी दौलत है, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो ये सब करना है, अब तूने दिया क्यों मुझे। और रिबेलियस हो जाते हैं। इंसान कभी अपने आप को अल्लाह की निगाह से देखे ना, तो शायद तुफ के अपने ऊपर, जितना अल्लाह हमें ज़्यादा देता है उतना हमें अल्लाह के रस्तों में ज़्यादा देना है, उतना दिल खोलना है, उतना दिल घट जाता है, उतना दिल घुट जाता है, उतना दिल परेशान होता है। हाथ से मेहनत करने वाला खुशी से खो सकता है कि उस काम को कर दे, जितना दौलतमंद के लिए हाल है। वो कहते हैं हमारे हालात बड़े टाइट हैं, हमें पता चला आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल डिसऑर्डर आना है, हमने अपने बच्चों के लिए कई करोड़ जमा करना है, इसलिए प्लीज़ डोंट टच अस। हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, अधूरे मनसूबे, और अधूरे छोड़ के दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह कहते हैं इस तरह इन लोगों की जड़ काट के रख दी गई, क्या मिला इनको इनकी दौलत से। इस्तेसाल कहते हैं इसको, जड़ कट जाती है ऐसे लोगों की। अल्लाह रहम करे, जिस बच्चे के पीछे अल्लाह की नमाज़ें छोड़ी वो बच्चा ही चला गया तो नस्ल कट गई। जिस दौलत के पीछे अल्लाह की नाफरमानियाँ की, फैक्ट्री में आग लगी, सारा ख़त्म। अब किधर गए, जिधर थे उधर ही चले गए। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला इसमें सिखा रहा है कि देखो तुम अल्लाह से आगे नहीं जा सकते, तुम बहुत बड़े नहीं हो, अपनी फिक्र करो, अल्लाह जो देता है वो छीन भी सकता है, उसको हर चीज़ की फिक्र है, उसको हर चीज़ की नज़र है, तो लिहाजा अल्लाह के इशारों को समझने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें आएँ उतनी आजजी लाएँ, बंदगी लाएँ। ना माल बुरा है, ना दौलत बुरी है, ना औलाद बुरी है, ये अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन इनको पाने के बाद रवैये बुरे हो जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं फ़कुतिया दाबिरुल कौम अल्लज़ीना ज़लमू, फिर इन जुल्म करने वालों की जड़ हमने काट दी, और जड़ कटी तो क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तीसरी दफ़ा आयत आ गई है कुरान पाक में तरतीब से, और सारी तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, क्या कि उसने इनकी जड़ काट दी, ख़त्म करो दुनिया को इनसे। अब अगली आयत फिर सोल सर्चिंग है, थॉट प्रोवोकिंग। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज हम सब से कहा जा रहा है, इनसे कहो, किन से, हम सब से, कभी तुमने ये भी सोचा अगर अल्लाह तुम्हारी बेनाई और समाज तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे। सोचिए एक लम्हे के लिए, कल जब मैं सो के उठूँ, मेरी आंखें काम ना करें, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कोई आवाज़ नहीं आ रही, मैं सोचती हूँ सब किधर चले गए, कोई आवाज़ ही नहीं है, और जो गौर व फिक्र की कैफियत थी, को दिल में जज्बे आते थे, दिलों पे मोहर लग गई, क्या ज़िंदगी है, बंद कमरा नहीं लगता सोच के। बिल्कुल ये कैफियत पीछे उस शख्स की थी जो अल्लाह की तरफ चल पड़ा। देखिए हम सोचते हैं ना कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होता है तो नेमतें छीनता है, और खुश होता है तो नेमतें देता है। नहीं, अल्लाह हमारी तरह नहीं है, हमारा ये हाल है। खुश हुए तो इतने खुश कोई हद ना छोड़ी, और नाराज़ हुए तो जो दिया है वो भी छोड़ दो, बात ही नहीं करेंगे, किसी से कलाम भी नहीं करेंगे। इस तरह सर मुशरिकाना अकीदा है। आपको पता है कि देवियाँ देवियों की तरफ मंसूब करते थे, कहते थे देवियाँ नाराज़ी होती हैं तो नेमतें बढ़ती हैं, और वो हमसे नाराज़ होती हैं तो दौलत हमसे ले जाती हैं। लेकिन अल्लाह ने इन आयतों में हमें बताया, अज़ाब की पहली किस्त नेमतों के मिलने से और उसकी फरावानी की सूरत में आती है। अगर आज हम खाते पीते हैं ना, तो समझ लें कि अज़ाब की पहली किस्त हमारे घरों में पहुँची हुई है। फिर दूसरी सूरत होती है जब अल्लाह छीनता है और मुबलिसून होता है। जिन चीज़ों में सारी ज़िंदगी लगी मौत की सूरत में, उनमें से एक चीज़ हमारी कब्र में नहीं जाती और तनहा चले गए। हदीस में आता है कि जब तुम किसी बदकार के ऊपर अल्लाह की नेमतें देखो तो कभी रश्क ना करना, तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह ने उससे राज़ी होकर उसको ये दिया है या अल्लाह ताला उससे नाराज़ हुआ और उसको दे दिया। आपको पता है कि इटली में एक शहर था पोम्पई का नाम का, उसमें माउंट विसोकिसिस नाम का एक शहर था, पहाड़ था, वहाँ लावा फटा और शहर के ऊपर अजाब आ गया। इतना वहाँ बेहयाई थी, नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आज भी कुछ शहर अमेरिका के ऐसे मारूफ हैं कि जहाँ जुआ और ये बदकारी के लिए लोग स्पेशली जाते हैं। कि जब उन पर लावा फटा तो ऐन जिना करने की कैफियत में वो प्रिजर्व हो गए। अब कई सालों के बाद इस सेंचुरी के शुरू में जब खंडरात निकले तो लोग उसी बुराई के फेल में प्रिजर्व जो है वो निकले वहाँ से। ये है अजाब इस्तेसाल उन जुर कई फनादरीबू, तुम देखो हम कैसी मिसालें पेश करते हैं। तो अल्लाह हम सबको यहाँ हिदायत के ज़िम्मत में कहता है, क्योंकि आज हमारी बंदगी का मौजू हिदायत है। बंदा सिर्फ नमाज़ें पढ़ के बंदा नहीं बनता, अबूत या सबमिशन सिर्फ नमाज़ें पढ़ के नहीं होती है, दिन से रात पे है। खुद से पूछिए, हिदायत के मौक़ों को झुठलाती हूँ कि पाती हूँ? गाइडेंस डिलेड, गाइडेंस डिनाइड। अल्लाह कहते इतना ना सोचो कि हिदायत पाने को दिल ही ना चाहे। देखिए मोमिन का माइंड कैलकुलेटिंग नहीं होता, ये नहीं कहता इफ्स एंड बट्स, अच्छा ये किया तो ये होगा, ये ना किया तो ये होगा, वो किया तो ये होगा। बस अल्लाह कहता है सोच लो, जो हो गया वो हो गया। तो तुम्हारे साथ अगर अल्लाह ऐसा करे, जिन आंखों और कानों से तुमने काम ही नहीं लेना हिदायत का, फिर अल्लाह उनको क्यों तुम्हें दे? तो अल्लाह के सिवा और कौन सा खुदा है जो कुव्वत है तुम्हें वापस दिला दो? कोई है ENT जो हमारी आंखें कान थ्रोट वापस कर दे? देखो किस तरह हम बार बार अपनी निशानियाँ इनके सामने पेश करते हैं और फिर ये किस तरह इनसे नज़र चुरा जाते हैं। कहो कभी तुमने सोचा? अब एक और सोच, अगर अल्लाह की तरफ से अचानक या ऐलानिया तुम पर अजाब आ जाए तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और हलाक होगा? सोचिए बैठे बैठे यहाँ जलजला आ जाए, धमाका हो जाए, क्या होगा? कोई बचेगा? हम जो रसूल भेजते हैं इसीलिए तो भेजते हैं कि वह नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बद किरदारों के लिए डराने वाले हों। हम इसका अपोजिट आज सोचे हुए, सारे डरावे आज हमारे ख्याल में मौलवियों के लिए हैं, क्योंकि हर वक्त दीन दीन मज़हब की बातें करके लोगों को लड़ाते हैं, और सारी खुशखबरियाँ बेअमलों के लिए, क्योंकि वो बड़े मासूम और बड़े भोले हैं। उनको पता ही नहीं चलता ये शराब है या हराम है, उनको पता ही नहीं कि शेक ऐड नहीं करते और नहीं करते, बस वो बड़े भोले लोग हैं। अल्लाह अकबर। फिर जो लोग उनकी बात मान लें और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें, ये हमारे लिए मशहूर है। जो हुआ सो हुआ, अब अपने आप को बदलना है। इनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं। और जो हमारी आयात को छुटलाएं और अपनी नाफरमानियों की पादाश में सजा भुगत कर रहेंगे, यानी फिर अच्छे काम करोगे तो फ़ायदे होंगे। दोबारा फिर देखिए मौजों का मुतालबा, कुल्ला कुलू लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास ख़जाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ़ इस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। फिर इनसे पूछो कि अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? आप भी बताइए, क्या तुम फिर गौर नहीं करते? अफला तफक्करून, गौर फिक्र बहुत है इसमें, और आपको यही फ़ायदा देगा सिर्फ तर्जमा पढ़ने और सुनने की बजाय। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस इल्मे वही के ज़रिए से इन लोगों को नसीहत करो जो इस बात का खौफ रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश किए जाएंगे कि इसके सिवा वहाँ कोई जी इकतदार ना होगा जो इनका हामी और मददगार हो या इनकी सिफारिश करे। शायद किस नसीहत से डर के वो खुदा रवि की, खुदा तरसी की रविश इख्तियार कर लें। देखिए यह बहुत खूबी की बात है। कुछ लोग कहते हैं हम कुरान की क्लास में आते हैं हमें बड़ा खौफ आता है, हाय नहीं कुरान नहीं सुनना, बहुत डर लगता है। तो यहाँ देखिए अल्लाह इनाम कह रहे हैं, कुरान सुनकर डरना ये अल्लाह की नेमत है। अब दो रवैये उभरते हैं इस डरने के बाद, या इंसान आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को छोड़ देता है जो नाफरमानी की है, और दूसरा रवैया एक और है कि कुरान सुनना ही छोड़ देता है। अब हम अपने आप से पूछेंगे, कुरान मोटिवेट करता है? जब खौफ होता है ना तो सवालात भूल जाते हैं, अमल शुरू हो जाता है। कोई आपसे सवाल पे सवाल करता हो, इतने में पीछे से कोई सायरन बजेगा, अच्छा अच्छा मैं भागी, मैं जा रही हूँ, मेरी बस आ रही है। खौफ उन लोगों को सवाल करने से रोक लेता है जिनको हिदायत की फिक्र लगी रहती है, वो हिदायत की गाड़ी में बैठना रहना चाहते हैं, वो उससे मिस नहीं करना चाहते। और जिनको हिदायत की गाड़ी की परवाह नहीं, वो सवाल ही करते रहते, कौन कंडक्टर है, कहाँ से इसने सीखा, ये किधर जाएगा, इसके बाद क्या होगा। तो अल्लाह ताला यही कहते हैं पीछे उधर, अब देखिए हम यहाँ बैठे ना, अल्लाह ना करे एक पुकार लगे नीचे से इस हॉल को खाली कर दे, हम बैठे रहेंगे इधर। छिपकली छोड़ दीजिए, एक छोटा सा कॉकरोच निकल जाए तो हम याद रखेंगे हम किधर बैठे थे, किस पाक मस्जिद में थे, किस का पाक महफिल में थे। तो ये आखिरत का खौफ हमें क्यों बेखौफ किए हुए है? ये क्यों थपकियाँ देख के रात को सुलाता है? नहीं नहीं सो जाओ, तुम बड़ी भोली हो, तुम्हारा हिसाब अल्लाह ने इतना प्यारा करना है कि तुम्हें पता ही नहीं चलना। अल्लाह करे ऐसा हो, हम दुआ करते हैं अपने लिए भी सबके लिए, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा
सोचिए।
वंजिर बिल्लज़ीना यखाफून, अल्लाह को ये लफ्ज़ अल्लज़ीना यखाफून इसको हाईलाइट कर लें, ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। फिर अल्लाह के नबी को मशवरा दिया, वला तत्रुद अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलशी युरीदूना वजहा, और जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते हैं और इसकी खुशनुदी की तलब में लगे हुए हैं, इन्हें अपने आप से दूर ना फेंको। इनके हिसाब में से किसी चीज़ का भार तुम पर नहीं और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ तुम पर नहीं, यानी ये बड़े बड़े लोगों के पीछे ना फिरो, ये छोटे छोटे गरीब बिलाल और अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे इनके साथ रहो, ये ज़्यादा काम के लोग होंगे। और आप देख लीजिए मक्का की तारीख, मदीना की तारीख और इस्लाम की तारीख, जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए वो कोई बहुत ज़्यादा खाते पीते लोग नहीं थे। खाते पीते से मुराद माल नहीं है, हर लिहाज से जिसमें कोई अपने आप को बड़ा समझे, सलाहियतों के इस्तेमाल से भी इंसान गरीब होता है और अमीर होता है। कुछ के बड़ी स्किल्स होती हैं, पड़े रहते हैं अपनी स्किल्स के साथ घर में, क्योंकि उनको क्या मिला उससे, एटीट्यूड नहीं अच्छा, टोन ठीक नहीं है, उनकी सोच ठीक नहीं है, कौन बर्दाश्त करेगा उनको। कभी आप देखिए, आप किसी मर्द का तसव्वुर में लाएं, डबल MA किया हो, मास्टर्स, पर गुस्से का तेज़ है, बात पे गुस्सा करता है, कोई जॉब देगा उसको अपने ऑफिस में, कहेगा इनको क्या करना है, हमने अपनी बेइज्जती करवानी है, जब दिल जाए बात कर दी, मालिक को भी कुछ कह के आगे लात मार के आगे जॉब के ऊपर, कोई नहीं देगा। लेकिन कोई कम स्किल्स वाले होते हैं, कंपनियां कहती बैठो हम तुम्हें ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं, सिखा लें, लेकिन तुम्हारा मिजाज बड़ा प्यारा है। और मैंने देखा है दीन के कामों में अल्लाह मिजाज को बहुत देखता है, खूबियाँ कोई नहीं देखता। हम जैसे नकारों से अल्लाह काम करा रहा है, इसी से सीख लीजिए अल्लाह किनसे कराता है। खूबियों वाले दीन का काम कर रहे होते तो आज मैं तो यहाँ ना बैठी होती, क्योंकि मुझे तो अपने अंदर कोई गुण नहीं दिखता। पैदा करें अपने अंदर बंदगी, आजजी, तड़पे, अल्लाह मुझसे कुछ करा, अल्लाह मुझसे करा। अल्लाह ताला कहते हैं आप इनको मत फेंके, अगर आपने इन बिलाल और इनको पीछे कर दिया या बुलाहा और अबू तालिब और ऐसे लोगों के लिए, तो याद रखिए फतकून मिनज़ालिमीन, तो आप ज़ालिमों में शुमार हो जाएंगे। हुआ नहीं ऐसा, लेकिन हो जाता अगर ऐसा करते।